आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, 10 जनवरी 2026 के साप्ताहिक बुलेटिन में सुनिए। हफ्तों के दबाव के बाद हुई बोंडाई हमले की जांच के लिए एक फेडरल रॉयल कमीशन की घोषणा। पूरे देश में बढ़ा आग का खतरा और भयंकर गर्मी पड़ने का अनुमान। अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं ग्रीनलैंड को खरीदने की संभावना पर सक्रिय रूप से चर्चा। और क्रिकेट में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन, 4-1 से सीरीज को किया अपने नाम। और अब साप्ताहिक समाचार विस्तार से स्वाति शर्मा के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ने बोंडाई आतंकी हमले की जांच के लिए एक साल लंबे फेडरल रॉयल कमीशन की घोषणा की है। हाईकोर्ट की पूर्व जज वर्जीनिया बेल जांच का नेतृत्व करेंगी और उन्हें यहूदी विरोधी और धार्मिक रूप से प्रेरित उग्रवाद की प्रकृति और व्यापकता की जांच करने का काम सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया की सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए जरूरी कोई भी अन्य सिफारिशें करने का अधिकार भी दिया गया है। यह घोषणा यहूदी समूहों, व्यापारिक नेताओं और खेल के महान खिलाड़ियों और साथ ही फेडरल विपक्ष के हफ्तों के राजनीतिक दबाव के बाद की गई है, जिसमें एक फेडरल रॉयल कमीशन की मांग की गई थी। एल्बनीसी का कहना है कि उन्होंने बोंडाई हमले के बचे लोगों और पीड़ितों के परिवारों के साथ बैठकों और सोचने समझने के बाद अपना फैसला लिया है।
Got it right. We listen to people. I think that's what people want. You know, the nation needs to come together.
उनका कहना है कि रॉयल कमीशन की अंतिम रिपोर्ट बोंडाई हमले की पहली बरसी पर आनी है। देश में दशकों में हुई सबसे दर्दनाक सामूहिक गोलीबारी पर तुरंत कानून पास करने के लिए नेता 26 जनवरी से पहले ही कैनबरा लौट रहे हैं। सिडनी के बोंडाई बीच पर दिसंबर में हुए आतंकी हमले से उजागर हुई कानूनी कमियों को दूर करने के लिए फेडरल सरकार अगले 2 सप्ताह के भीतर संसद को वापस बुला रही है। कोएलिशन लीडर सुजन ली ने मांग की है कि प्रधानमंत्री हमले के जवाब में बड़े कानूनी बदलाव करें।
Every day that the Parliament has not come back has been a day coming back late. The Prime Minister has missed the moment and missed the mark to lead the country through the aftermath of this awful terrorist event.
बोंडाई आरोपी बंदूकधारी नवीद अकरम को राज्य की सबसे सुरक्षित जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो सबसे अधिक जोखिम वाले कैदियों के लिए आरक्षित है। 24 वर्षीय अकरम को सिडनी की लॉन्ग बे जेल से गॉलबर्न करेक्शनल सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो शहर से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में एक सुपर मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी है। करेक्टिव सर्विसेज न्यू साउथ वेल्स का कहना है कि इस जेल को उन कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया है जो सबसे बड़ा सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं। अकरम पर 14 दिसंबर को बोंडाई बीच पर हुए आतंकी हमले के मामले में हत्या के 15 आरोपों सहित 59 आरोप हैं और उसे 8 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्सों में शुक्रवार 9 जनवरी को आग पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। साथ ही दूसरे राज्यों के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी समय आग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर हिस्सों को अत्यधिक गर्मी की लहर का सामना करना पड़ रहा है, जिसके सप्ताहांत में जारी रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ गया है और लोगों को गर्मी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। विक्टोरिया के नॉर्दर्न कंट्री, नॉर्थ सेंट्रल और विमेरा जिलों में एक भयावह आग के खतरे की रेटिंग लागू है। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त मेल नैनियन ने विरोध प्रदर्शनों पर व्यापक प्रतिबंधों में 14 दिनों के विस्तार की घोषणा की है। इन पाबंदियों की घोषणा पहली बार क्रिसमस की पूर्व संध्या पर की गई थी। बोंडाई आतंकी हमले के बाद और उसके जवाब में पास हुए कानूनों के तहत कमिश्नर के पास सार्वजनिक जगहों पर कुछ समय के लिए जमावड़े पर रोक लगाने का अधिकार है। इस घोषणा के तहत किसी भी सार्वजनिक जमावड़े को मंजूरी नहीं दी जा सकती और सार्वजनिक सभाओं की मंजूरी के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कमिश्नर लैनियन का कहना है कि पाबंदियों को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला समुदाय में तनाव कम करने के लिए है।
Public assemblies, when held peacefully, is still allowed. They are not prohibited, but no form ones will be approved. Therefore, those that act outside the Summary Offences Act are likely to have action taken against them. Where someone obstructs pedestrians or traffic, behaves in a way that is intimidating or harassing, or behaves in a manner that is likely to cause fear, they may be provided a move-along direction by police. It will be an offence if a person does not comply with that direction.
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने रिकॉर्ड तोड़ मानसूनी बाढ़ से तबाह उत्तर पश्चिम क्वींसलैंड समुदायों को सहयोग देने के लिए 38 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है. अल्बनीजी ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मरम्मत और आपातकालीन पशु चारे के लिए तत्काल धन की घोषणा करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया. यह ऐसी बारिश के बाद हुआ है जिसमें एक साल के बराबर का पानी सिर्फ 3 दिनों में बरस गया. उन्होंने जोर देकर कहा कि फेडरल और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं ताकि प्राथमिक उत्पादक और लोकल काउंसिल लंबे समय तक चलने वाला रिकवरी प्रोसेस तुरंत शुरू कर सकें. न्यू साउथ वेल्स में पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा वार्षिक सड़क हादसों की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें साल 2025 में राज्य की सड़कों पर 355 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि यह 2017 के बाद सबसे अधिक है, जिसमें 70% मौतें ग्रामीण और क्षेत्रीय सड़कों पर हुई हैं. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना जानलेवा हादसों का सबसे बड़ा कारण था, जिससे 134 मौतें हुई. उसके बाद थकान की वजह से 75 मौतें हुई. यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के कार्यालय का कहना है कि वेनेजुएला पर यूनाइटेड स्टेट का मिलिट्री हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करता है और दुनिया को कम सुरक्षित बनाता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि राजधानी काराकस और उसके आसपास बमबारी और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ना कानूनी था, और उनका दावा है कि यह वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल के साथ एक हथियारबंद लड़ाई है. अमेरिका का कहना है कि वह ग्रीनलैंड को खरीदने पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में द्वीप पर अमेरिकी नियंत्रण की संभावना को फिर से तूल दे दिया है. आशंका व्यक्त की गई है कि वेनेजुएला में पिछले सप्ताह के अंत में सैन्य अभियान में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी ग्रीनलैंड में अमेरिकी कार्रवाई के लिए एक प्रकार के टेम्पलेट या प्रेरणा के रूप में काम कर सकती है. 57,000 लोगों के इस बड़े द्वीप को डेनमार्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का नेटो सहयोगी है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का कहना है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं. जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेपुहल ने कहा है कि ग्रीनलैंड का भविष्य डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों को तय करना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने फिर से दोहराया है कि वह सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता में विश्वास करता है. और अब खबरें खेल और क्रिकेट जगत से. ऑस्ट्रेलिया ने एसजीसी में 5वें दिन आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 4-1 से एशेज सीरीज अपने नाम कर ली है. यह ऑस्ट्रेलिया में लगातार चौथी एशेज सीरीज है जिसमें मेजबान टीम ने कम से कम 4 टेस्ट जीते हैं. पहली इनिंग्स में सीरीज का अपना 4th शतक बनाने के बाद ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. रिटायर हो रहे उस्मान ख्वाजा अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग में सिर्फ 6 रन बना पाए, लेकिन जब वे स्टेडियम से बाहर निकले तो घरेलू दर्शकों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई. इसी के साथ इस सप्ताह की समाचार सुर्खियां समाप्त होती हैं. आप अन्य खबरें और जानकारियां जब चाहें सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर. धन्यवाद.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.